Srimad Bhagavatam Anuvad or Tatparya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke Dwara Pratam Skandha Dvitiya Adhyay Shlok Sankhya Che Saha Vai Pungsam
Va
Vai
Nishchaihi
Pungsam Manushyong ke liye Paraha Divya Dharamaha Vritti Yataha Jisse
Bhaktihi
Bhakti Adhokshaje
Adhyatma ke prati
Ahaituki Akaran Apratihata
Abhanga
Yaya
Jisse
Atma Suprasidati Purnataya Prasanna Hota Hai Anuvad Sampurna Manavta Keliye Param Vritti Dharam Vahi Hai Jiske Dwara Sare Manusha Divya Bhagavan Ki Prema Bhakti Prapt Kar Sake Aisi Bhakti Akaran Tata Akhand Honi Chahiye Jisse Atma Purnataya Tusht Ho Sake Tatparya, is katan ki dwara. Shri Sudh Goswami, Naimisharanya ke Rishiyon ke Pratam Prashna ka utar dete hain. Unhone Sudh ji se anurod kiya tha ki ve samasta shastron ka sa prastut kare, jisse patit atmaon ya Jana Samanya usse saralta se grahan kar sake. Vedon me manusha ke liye do prakar ki vrittiyan bataye gaye hain. Ek pravritti marg ya indriya bhog ka marg aur dusra nivritti marg ya sanyas ka marg. Nivritti marg ya vairagya ka marg. Bhog ka marg Nikrishthe or Nivritti ka mag Srishthe Jeev ka bhotik jivan ek prakar se vastavik jivan ki rugna avastha hai. Vastavik jivan to Brahma bhut avastha hai. Jaha jivan sat, chit, tata anandamaya hai. Bhotik jivan nashavan, mohapurna, tata kashtamay hai isme sukh to nahi hai nahi hi hai kashton se chutkara pane ke prayas vyarth hai aur kashton ka kshanik nash hi jhoota sukh khalata hai jhoot sukh atha pragatishil bhautik bhog ka marg nashavan Ata Pragati Shil Pragati 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 hi Maya hai Bhotik Pragati Bhotik Bhoka Mag Nashvan Kashtamai Suno Dhyan se Tata Moha Purna Hone Ke Karan Nikrishthe Bhagavad Bhakti Shresht Dharm Kahalati hai. Kyonki isme Satchidananda Jivan Bitta hai. Jab isme Nikrisht Gun Mil Jate hai, to ya kabhi kabhi Dushit ho jate hai. Udaharan Arth Bhotik Lab ke liye ki gai Bhakti Nivritti Mag me Badak hai. Is rugna jivan ko bhogne ki apeksha sanyas ya sarvatyag srishtata vritti hai Actually, it's not sanya. It should be vairagya. Vairagya, farak hai. To grihastha vairagi bhi ho sakte. Aise bhog se rog ke lakshan badhte hain aur uski avadhi bhi badh jate hain. अर्थात भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख सुख उपभोग की रांच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वृद्धा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक कल्पना से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जनभूज कर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे। जीव के अस्तित्व का पोषण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को समन्वित करना है। कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक जीव है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण ही पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश रूप है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है या दिव्य है और हमारे सांसारिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है भक्ति की प्रगति से इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस बद अवस्था में भी भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और तुष्टि मिल सकेगी। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। इस श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है इस प्रश्न पूछना, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे और जीवन का क्या अर्थ है। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में है, एकदम स्पष्ट उत्तर है। और केवल इस वचन का समझने से तो पूरा मानव समाज के असंख्य समस्याओं का समाधान मिलते खाली इस श्लोक में। भक्ति विनोद ठाकुर भी वैसे बोलते हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नाय। तो खाली यही समझना है कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है, नाशवान है और शरीर के साथ कष्ट होते हैं। शरीर प्राप्त करने के साथ तो कष्ट प्राप्त करना असंभव है, और भौतिक शरीर के साथ भौतिक चेतना होती है जिसका मुख्य लक्षण है अज्ञान। चेतना है लेकिन हम जिंदा शव जैसे है, तो वास्तविक चेतना कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, वो चेतना नहीं है। तो मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा यही स्वरूप, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण दास हूं। तो खाली यही छोटी सी बात समझने से पूरा मानव समाज के असंख्य समस्याओं का समाधान होते, और इसको समझ के क्या करना है, जीव कृष्ण दास है विश्वास कर लेता और दुख आना है, और दुख नहीं, और कुछ भी दुख नहीं होते अगर हम समझते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं। फिर उसके बाद क्या करना है, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सुबह सब, राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलो। तो सवाई फुंग संग परो धर्म पर धर्म परम धर्म, सब जीव के परम धर्म है कृष्ण सेवा करना। परम धर्म श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी अनुवाद में उन्होंने धर्म शब्द वृत्ति अनुवाद किया, वृत्ति वृत्ति मतलब जिस वो कर्म जिससे हमारे अस्तित्व का पालन पोषण होते हैं। तो अन्य इस अधोक सज कृष्ण सेवा के व्यतीत और सभी प्रकार का धर्म क्या है, देह धर्म, समाज धर्म, भ्रंत भू धारणा से उद्भूत धर्म। तो वास्तव में ये सभी अन्य प्रकार के धर्म तो धर्म नहीं है। धर्म इस शब्द का मूल है धृत, जिससे उदाहरण शब्द आते हैं। तो हमारा अस्तित्व तो कैसे उसका धारण होते, अर्थात हम जो है हमारा क्या मूल लक्षण है, तो पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियों नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम जीव है। तो और सभी प्रकार के धर्म, इंद्रिय जनित धर्म, मानसिक धर्म, बुद्धि से उद्भूत धर्म और सब काल्पनिक धर्म है। तो अगर मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरा भारत महान, ऐसे बोलना मेरा धर्म है, और जीवन उत्सर्ग करना भारत को महान बनाने के लिए, यही मेरा धर्म है, देश धर्म, देशभक्ति बोलते। और आगा मैं सोचता हूँ कि ये नारी मेरी पत्नी है, तो फिर मैं सोचूंगा कि पत्नी की रक्षा करना और पूरा परिवार जो पत्नी में से उत्पन्न होते हैं। तो मेरा धर्म है पूरा परिवार का पालन पोषण करना, वो भी एक प्रकार का धर्म है। और शास्त्र में इस धर्म का वर्णन है, लेकिन परम धर्म, शाश्वत धर्म वो क्या है? पत्नी पुत्रों पुत्रियां वो संबंध, ये सब संबंध देहगत अर्थात देह से प्रस्तुत होते हैं, और देह का नाश के साथ ये सब संबंध समाप्त होगा। तो वो देह का पतन का मरण के बाद तो वो मर गया व्यक्ति का तस्वीर रखना है उसका घर में, लेकिन खाली तस्वीर है, वो व्यक्ति कहाँ गया है कोई नहीं बोल सकते। वो संबंध तो अभी वो संबंध तो खाली स्मरण में है, वो व्यक्ति चला गया नहीं, तो वो संबंध सनातन नहीं है। सनातन धर्म है वो संबंध जो सनातन है। तो हमारी सभी स्थिति जो हम संसार में मिलते हैं वो सब असनातन है, क्षणिक, और इस प्रकार हम असंख्य प्रकार के संबंध स्थापन करते हैं, फिर काल का प्रभाव से सब टूट जाते हैं। शायद पिछले जन्म में मैं मेरे माँ बाप को बहुत आदर बहुत स्नेह किया था, और माँ बाप ऊंट और ऊंटी थे, माननीय ऊंट पिताश्री, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या हुआ क्या था और भविष्य में क्या होगा हमें नहीं मालूम। क्या होते हैं यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरं तं थमे वाइति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो वस्तु या विषय पर हम देह त्याग करके स्मरण करते हैं तो उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तो अगर युद्ध में कारगिल में, अब याद है कारगिल उस समय तो कारगिल अभी सब भूल किया था, तो कितने साल के पहले, 5 साल ऐसे 6 साल, उस समय तो कारगिल हम कभी भी भूल नहीं करेंगे, तो 3 महीने में सब भूल हो गया। तो अगर कारगिल में एक सैनिक भारतीय सैनिक मार जाते पाकिस्तानी फौज को आक्रमण करके, तो पाकिस्तान द्वेष करके नफरत करके मार जाते हैं, और उसका फल होगा कि पाकिस्तान चिंतन करके तो पाकिस्तान में जन्म लेगा, और करीब अगला जन्म में भारत को आक्रमण करके करेगा। तो ऐसा होता है, देखो तो ये संसार चक्रमण कितनी बड़ी माया है। तो एक जीवन में हम मेरा भारत महान सोचते हो, पाकिस्तान दुश्मनी, अभी तो भाई भाई हो गया और कुछ दिन के बाद फिर दुश्मनी होगा और उसके बाद भाई भाई होगा, तो राजनीतिक स्थिति के अनुसार अगर पॉलिटिशियंस के लिए अनुकूल है पाकिस्तान को भाई भाई बोलने तो भाई भाई बोलते हैं, और अगर उसके पॉलिटिकल पोजीशन के लिए तो पाकिस्तान हाय हाय बोलना है तो हाय हाय बोलते हैं, और सब प्रजा इतने बड़े मूर्ख है कि पॉलिटिशियन अगर पाकिस्तान सब दुश्मन है तो अगर पॉलिटिशियन बोलते हैं तो सब प्रजाओं भी बोलते हैं, और अगर वो सब भाई भाई और ठीक है अभी सब भाई है तो साधारण लोग जनता तो मूर्ख है सब, और नेताओं भी मूर्ख है। अंधा यथा अंधाय रूप नियमान स्थिपीश तंत्राम उरुदाम निबाधा, तो एक वो सब अंधा है और अंधा नहीं जानते कुछ भी नहीं देख सकते, और दूसरा आदमी आते हैं बोलते हैं ठीक है मेरे हाथ पकड़ो मैं ठूंक ले जाऊंगा, लेकिन वो अंधा आदमी नहीं समझते कि वो ले जाने वाला वो भी अंधा है और ऐसे दोनों तो नाले में गिर जाते हैं, और ऐसे अंधा यथा अंधा है वो मतलब हमारा पूरा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि विरहित होने से हम सब अंधे हैं, और सब अंधे अंध होने से सब नाला में नहीं गिरते हैं हम नरक में गिर जाते हैं। तो ये सब भौतिक तथाकथित धर्म पालन करने से अधोगति प्राप्त होती है, और परम धर्म वास्तविक धर्म पालन करने से हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जननी जठरे शयनम इस संसारिक स्थिति संसार चक्रमण से मुक्त होते हैं। तो एक प्रकार का धर्म है मोक्ष धर्म, इस मार्ग अवलंबन का लक्ष्य है संसार चक्र से मुक्त होना, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वीकार नहीं करते हैं कि त्रिगुणों से परे वैकुंठनाथ भगवान अधोक्षज है, और स्वीकार करके भी तो पूरा स्वीकार नहीं करते, बोलते कि जी हाँ भगवान है पर मैं तो मैं भी तपस्या करने से भगवान जैसे बन जाऊंगा और भगवान की ज्योति में लीन होऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति समझते हैं कि भौतिक स्थिति दुखमय है, लेकिन कि जीव का एक ही धर्म है वास्तविक धर्म है अधोक्षज भगवान विष्णु के श्री चरण कमल में आत्मसमर्पण करना, वो नहीं समझते स्वीकार नहीं करते। तो ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शब्द नहीं समझ के तो बार बार भगवान भगवान प्रभु प्रभु बोल के भी हमारा कोई वास्तविक संबंध भगवान के साथ वो नहीं होगा। तो अधोक्षज अक्ष इस ये अधोक्षज शब्द तीन शब्द से गठित है, अध अक्ष ज, अक्ष मतलब अंक, ज इसका मतलब जन्म अर्थात अक्षज अक्षज इसका मतलब साधारण दृष्टि से जो दृष्ट है, और अधोक्षज इसका ये शब्द का अर्थ जो साधारण दृष्टि के अतीत है। तो इसका क्या मतलब? हम बोलते हैं कि हम मतलब शास्त्र वाणी है और सब महान महान ऋषियों की वाणी है कि भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन गुण के अतीत है, वे ही अधोक्षज। साधारण दृष्टि से इनका दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब पंच सहस्र वर्षों के पहले जब इस धराधाम में उपस्थित थे तो केवल शुद्ध भक्तजन इनको नहीं देखा, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, बड़े राक्षस भी भगवान कृष्ण का दर्शन मिला और बहुत साधारण व्यक्ति भी। तो वो कैसे संभव था? अगर भगवान कृष्ण साधारण आंखों से दृश्य नहीं है तो कैसे ये सब व्यक्ति भगवान का दर्शन मिले? तो उत्तर है तो नहीं मिले। तो वो भगवान का रूप दर्शन करके भी कि वे भगवान है तो स्वीकार नहीं किए। परम या श्रेष्ठ उदाहरण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का दूत का कार्य करके धृतराष्ट्र का राजसभा गए और धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि कौरव पक्ष को बोले कि मैं भगवान हूं और मैं पांच पांडव को समर्थन करता हूं, तो युद्ध नहीं करके भी चूंकि मैं पांच पांडव को समर्थन करता हूं तुम्हारी कोई आशा नहीं है। तो ये सब बात सुन के दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया। वो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसे है तो हमेशा गुस्सा रहता था, लेकिन वो ज्यादा गुस्सा हो गया कि क्या तुम भगवान हो? तो उस समय भगवान कृष्ण प्रमाण देने के लिए इनका विष्णु विश्वरूप प्रदर्शन किया। अर्जुन को विश्वरूप दिखाने के पहले वो युद्ध या कुरुक्षेत्र जाने के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन आदि कौरव दल को प्रदर्शन किया और धृतराष्ट्र भी देखा। तो धृतराष्ट्र का पूरा जीवन में तो कुछ नहीं देखा, लेकिन उस समय विशेष अनुरोध किया श्री कृष्ण से कि मुझको थोड़ा समय के लिए मुझको दृष्टि शक्ति दे जिससे मैं आपका विश्वरूप दर्शन मिल सकता। तो वास्तव में वो विश्वरूप से आदि द्विभुज मुरलीधर वो रूप श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं समझते और विश्वरूप पर आकृष्ट होते हैं। तो उस समय दुर्योधन प्रत्यक्ष से अर्थात इनके स्वयं के अंकों से देखा कि कृष्ण तो विश्वरूपी है, तो फिर भी विश्वास नहीं किया कि यही भगवान है। बोले ये कुछ इंद्रजाल है, जादू है, Sai Baba jaise. वो साई बाबा तो इतना सा नहीं देख सकते, कुछ विभूति छाया दिखाते, कुछ भी वो लकड़ी तो आग से लाना तो उसे छाया मिलते, लकड़ी जलाने से तो छाया मिलते, ये साई बाबा का प्रदान है मानव समाज के लिए. वो एक्चुअली इन गोवा में साई बाबा बोल के सब वो शिरडी वालों को समझते, लेकिन वो दूसरा साई, हाँ साई बाबा मेक्स यू साई, वो छाया देते विभूति बोलते. तो क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि शुद्ध नहीं थी, इसलिए स्वयं आंखों से भगवान कृष्ण का रूप दर्शन मिलके भी तो कृष्ण भगवान नहीं देखा, क्योंकि वो सोचा कि वो साधारण व्यक्ति है, मेरा दुश्मन है, तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और मेरे सभी योजनाएं अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्णा बड़ा बदमाश तो हमेशा मेरे सब प्लान में बाधा देते, तो वो सब असुर ऐसे बोलते नहीं. हिरण्याक्ष वराहदेव को बोला कि आओ मेरे सामने और मैं तुमको मरा दूंगा, जो संभव नहीं है भगवान को मार देना. तो ऐसे सोचते कि वो एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मेरे जैसे कोई शक्तिमान नहीं है. तो भगवान कंस ऐसे बोला ना, तो भगवान विष्णु तो सबके हृदय में चला गया है, तो मुझसे डर लग के मुझसे डरते हैं, इसलिए सबके हृदय में प्रवेश किया है. तो अगर वो बाहर आएगा मैं उसको मरा दूंगा, ये कंस का विचार है. तो कि भगवान विष्णु की शक्ति असीम है और कि वे सब के हितैषी है, असुरिक जन स्वीकार नहीं करते. भगवान सबके हितैषी है, लेकिन असुरिक जन का विचार में मेरा हित मेरा कल्याण क्या है, भगवान को भूल करके उपेक्षा करके खुद को भगवान स्थापना और मैं धनी हूँ, मैं जगत का केंद्र हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सभी वस्तुओं की भोगी हूँ, ईश्वर हम भोगी, ये असुरिक भावना है. ऐसे सोचने से कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सोचते थे कि मेरा हित है धनी होना, प्रशंसित होना, जनप्रिय होना. कि भगवान धनी है, भगवान सब की प्रशंसा का पात्र है, कि भगवान सबकी प्रेम का आस्पद, तो असुरिक जन स्वीकार नहीं करते. इसलिए अधोक्षज विष्णु का दर्शन प्राप्त करके भी तो भगवान को नहीं देखते, देखते हैं लेकिन इनके अंतर दर्शन है कि यही एक व्यक्ति है, यही मेरा दुश्मन है, जिनकी दिव्या दृष्टि है, तो सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान का दर्शन मिलते हैं। योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सदा जो मेरे जो मुझको प्रेम करते हो, श्री कृष्ण बोलते हैं, जो सदैव मुझको देखते और मैं भी मेरा वैसे भक्त सदैव देखता हूँ, वो कभी भी मुझको नहीं बोलता और मैं ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं बोलता हूँ। तो ये प्रेम संबंध से भक्तजन भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान को देखते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान सदैव सर्वत्र उपस्थित है, लेकिन अभक्तजन तो भगवान का साक्षात उपस्थिति में भी भगवान को नहीं देखते। तो अधोक्षज दिव्या दृष्टि अर्थात प्रेममयी दृष्टि से भगवान का दर्शन मिलते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से हम भगवान की कृपा से अधिकार मिलते हैं भगवान को देखना। तो हम कैसे अधिकार मिलेंगे, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ? सेवा संबंध, प्रेम सेवा संबंध। तो यदि हम प्रस्तुत नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, तो हम भगवान हमको इनका दर्शन हमको नहीं देंगे। यदि हम सेवान्मुख है तो भगवान हमको योग्यता देंगे इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत यदः। भगवान का नाम गुण रूप, कृष्ण का नाम गुण रूप लीला परिका वैशिष्ट इत्यादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय, साधारण स्थूल इंद्रियों में से भगवान कृष्ण का अनुभव करना संभव नहीं है। यदि हम सेवान्मुख हैं अर्थात उत्साही है श्री कृष्ण की सेवा करने, किस प्रकार की सेवा? अहैतुकी या प्रतिहता। अहैतुकी इसका मतलब कोई भौतिक कारण नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। कृष्ण सेवा केवल कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रीति के लिए करना है, वो अहैतुकी सेवा बोलते हैं। और अप्रतिहता सदैव कोई छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं होते हैं, नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और साल में दो हफ्ते की छुट्टी होते, तो हम सब नियम पालन करते हैं और दो हफ्ते छुट्टी हम गोवा जाते हैं और क्या बोलते हैं, वो एक प्रकार का शराब है नहीं, जो खजू खजू का फल से फैल खजू फैली फेरी, तो शिष्ट लोग नहीं लेते, विस्की पीते हैं ना, और नीच लोग पीते हैं क्या? नीच लोग ठीक है, सो माफ कीजिए, आपके लिए नहीं, आप जैसे लोग वो के लिए नहीं है, आप जैसे मतलब नॉट यू बट योर लेवल ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग विस्की, नॉट दैट्स फॉर वेरी लो पीपल, वे हम हाई क्लास है, हम विस्की पीते हैं। So there's no holiday. Bachpan mein aisa meri shanka thi ki dekha ki us church mein wo sab priest to har roz wo mass lete hain lekin saal mein do hafte mein to chuti jisme wo sab kuch kar sakte hain wo sab mass prayer sab band karte hain aur क्या कहते हैं कोई नहीं जानते वो इसको भी निकालते एंजॉय करते हैं जो भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है और शुद्ध भक्तजन कोई छुट्टी नहीं चाहते चाहते हैं कि और ज्यादा समय में भी हम अवसर लेंगे भगवान की सेवा करने तो जब मैं इस्कॉन का आश्रम पहले जुड़े हुआ तो ऐसा बोलना था तो कम खाओ आराम कम करो और ज्यादा सेवा करो निद्रा हार विहार कार्य विजितो Shara Goswami, Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath. Nidra, Ahar, Vikar. Is prasang mein vikar ka matlab aur sabhi daihik kartavya. To kam karo aur jyada seva karo. To ye ahaituki apratihata bhakti. और इस प्रकार की भक्ति से सेवनमुख ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः कृष्णा हमको कृपा देते हैं जिससे हम सदैव अवसर मिलेंगे भगवान को देखने के लिए क्योंकि शुद्ध भक्तजन की इच्छा नहीं है कि मैं भगवान को देखूंगा मेरा आनंद के लिए मेरा सुख के लिए नहीं है तो मेरा उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और अगर भगवान संतुष्ट है तो वे इनका रूप मुझको देखेंगे और अगर नहीं तो मैं नहीं देखूंगा तो फिर भी मेरा धर्म है मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना तो अहितु की अप्रतिहता भक्ति से अधोक्षज विष्णु प्राप्त होते हैं इनका दर्शन होते हैं अहितु की हमारी भक्ति यदि अहितु की अप्रतिहता नहीं होते हैं तो अधोक्षज भगवान का दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है तो वो अधोक्षज वे अधोक्षज साक्षात का वो वैकुंठ का पर्याय है और उसके ऊपर भी और एक स्तर है अधोक्षज जो साधारणी दृष्टि से दृष्ट नहीं होते हैं वे ही भगवान तो साधारण दृष्टि है प्रत्यक्ष जो हम साधारण आंखों से देखते हैं साधारण मतलब भौतिक बुद्धि से सब कुछ जो हम देखते हैं मैं देखता हूँ विचार करता हूँ वो क्या मेरे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल अगर अनुकूल हो हम ग्रहण करते हैं अगर प्रतिकूल है हम अग्रहण करते हैं ये मन कलुषित मन की दो वृत्ति है संकल्प विकल्प अगर मैं कुछ देखता हूँ अच्छा लगता हूँ ठीक है मुझे दो हम प्रयास करते हैं उसको ग्रहण करना, और अगर वो अच्छा नहीं लगते तो उससे भय लगते हैं या उसको ग्रहण नहीं करते। और ऐसे कान में से सब कुछ जो हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, तो रेडियो और ज़्यादा बजाओ, और नहीं अच्छा नहीं लगता उसको बंद करो। तो सभी इंद्रियों में से हम भौतिक जगत, भौतिक स्थिति के बारे में ज्ञान मिलते हैं, वो प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अधोक से जब भगवान विष्णु के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन क्या होते हैं, सामान्यतः लोग जो धार्मिक है, धर्म करते हैं, भगवान या गॉड या अल्लाह को विश्वास करते हैं, किस लिए? जिससे इनके भौतिक इंद्रिय सुख का वर्धन होगा। तो ऐसे अधोक से जो भगवान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। हम सोचते हैं कि पूरे जगत में सभी वस्तुओं जो है मेरे सुख के लिए है, और अगर भगवान हो तो इनकी शक्ति के द्वारा मेरा सुख वर्धन होगा, तो वो भगवान नहीं है। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? हमारा धर्म है भगवान का सुख के लिए सब कुछ करना। लेकिन दूषित बुद्धि से हम विचार करते हैं कि भगवान का धर्म है मेरा सेवा करना। तो ऐसे भगवान, काल्पनिक भगवान, वास्तविक भगवान नहीं है। तो ऐसे धर्म तो वास्तव में वो धर्म नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते सावधामान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान जो धर्म संस्थापन का अर्थ के लिए आते हैं, अंत में बोलते सावधामान परित्यज्य, तो सब धर्म छोड़ दो, सभी तो, और इस धर्म मेरे चरण में शरण, पूर्ण शरण लेना, वो ही धर्म ग्रहण करो। तो प्रत्यक्ष एक और प्रकार का ज्ञान है, परोक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात स्वयं के अक्ष के द्वारा जो हम देखते, स्वयं के कानों में से जो हम सुनते हैं, स्वयं का जीवा से उस स्वाद जो हम मिलते हैं, जो ऐसे ग्यारह इंद्रियां हैं, पांच पांच ज्ञान इंद्रिय है, पांच काम इंद्रिय है, और दोनों का केंद्र है मन। तो ऐसे प्रत्यक्ष बुद्धि होती है और परोक्ष ज्ञान भी है। परोक्ष पर अक्ष अर्थात जो ज्ञान जो हम अन्य व्यक्तियों के अक्ष से मिलते। कोई है यहाँ पर जो जापान गया है, टोक्यो, एनीवन? I went once. Anyway, तो टोक्यो है ही नहीं, ऐसे जगह है टोक्यो, आप सब विश्वास करते हैं, लेकिन कोई नहीं गए, तो कैसे आप जानते हैं कि टोक्यो जापान का राजधानी है? कैसे आप मालूम है? तो टीवी पर देखा, मैं स्कूल में पढ़ते हैं, द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, तो ऐसे आपका विश्वास है। तो आप स्वयं प्रत्यक्ष से, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है कि जापान ऐसे स्थान है, लेकिन आपको विश्वास है परोक्ष। अन्य व्यक्ति बोलते कि जापान का राजधानी है टोक्यो, तो ये परोक्ष ज्ञान बोलते। फिर एक और प्रकार का ज्ञान है अपरोक्ष, जो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष मिलके जो हम अंदर में विचार करते हैं या अंतर्दर्शन से वो ज्ञान जो जिसका स्फूर्ति होती है अपने आप, वो अपरोक्ष बोलते हैं। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष ये सब भौतिक है और आध्यात्मिक ज्ञान अधोक्षज ज्ञान है। तो वो अधोक्षज ज्ञान अधोक्षज विष्णु के बारे में है और उसके ऊपर भी और एक स्तर है, वो अप्राकृत बोलते। अप्राकृत ज्ञान का मतलब कृष्ण की व्रज लीला। अधोक्षज इसका मतलब भगवान जो महान है और इनके महान कोई नहीं है, तो फिर भी महान अधोक्षज भगवान स्वयं निम्न स्तर लेते हैं लीला में। तो हमारे विचार में, जीव का विचार में कृष्ण के ऊपर नहीं है और कृष्ण ऐसे बोलते हैं भगवद गीता में, मत परत्राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, और यही भगवान शब्द की परिभाषा है। भगवान के ऊपर नहीं है कोई, भगवान के समान नहीं है, वही ही सर्वश्रेष्ठ। पर कृष्ण का विचार में मेरा बाप है नंद महाराज, मेरे ज्येष्ठ भाई है बलराम, राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वर ऐसे नाम कभी सुना नहीं? वृंदावनेश्वरी राधा। तो लीला विचार में कृष्ण से बड़ा है राधा, नंद महाराज, यशोदा, ये अप्राकृत ज्ञान है। अधोक्षज स्तर के परे अप्राकृत स्तर है। तो ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नहीं समझने से ये वो सब धर्म जो धर्म का नाम में चलते हैं तो सब में कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत भूल धारणा भी होती है। अगर हम नहीं समझते कि कैसे भगवान प्रकृति के तीन गुण के परे है, तो गॉड गॉड हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सब बोल के भी तो हमारी स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती भगवान के बारे में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ है, तो भगवान कौन है, भगवान की भगवता अर्थात भगवान कैसे भगवान है, भगवान बोल के क्या समझना चाहिए, तो ये सब विषय की चर्चा है भागवत का आरंभ में। और ये सब अच्छी तरह नहीं समझ के तो भागवत शास्त्र में प्रवेश नहीं होते। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी विषय अच्छी तरह समझना। तो अधोक्षज ये शब्द का क्या मतलब है, कोई मुझको बताएंगे अधोक्षज इस शब्द का क्या मतलब है?
जो
beyond mundane sense perception. Bhautik indriya gyan ke pare ke atit adhok saja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
So is vishay bahut mahatva parna aur iske bare mein kam se kam 12 ghante ka class hona chahiye. Lekin samay itna sa nahi hai. Acha hota ki hum sab dusre dharm, office dharm, factory dharm, ityadi bol karenge aur yaha baithke 10 din 10 mahina ad hoc sacha shabd par baat karenge. Lekin adhunik pragati aise hoti hai ki shakyata nahi. इसलिए संक्षेप में हम प्रयास करेंगे ये सब चर्चा करना. हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. कलयुग में सब प्रायनाल पायस सभ्यो सबकी आयु बहुत कम होते हैं. कलावस्मिन इस कलयुग में Prayanala payasa sabya kalava smin yuge janaha manda sumanda mateo manda bhagahi upadruta. To ye sab lakshan hai. Pratyaksh se hum dekh sakte. Isliye uchna adhoksaja gyan ka avashakta nahi. To pratyaksh se hum dekh sakte. Sab manda, manda bhagya, manda buddhi. और उपद्रुता मुख्य कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सब लोग सदैव विचलित, सबके मन विचलित रहते हैं. तो समय नहीं है और माति भी वैसी नहीं होते. बुद्धि 10 महीना बैठ के अधोक्ष जो सब शब्द पर चर्चा करना. To isle Haran Nama Eva Kevalam. Harinam ki kripa se. Uchne Visham jo Mahan Rishi Munigan Purva Yogam me nahi samaj paya. To Chaitanya Mahaprabhu ki kripa se. Ham Kali Hattaji Vanadi Kari होने के पर इस श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान पर अवगत हो सकते हैं.